Hare Krishna. Today I will speak on three aspects. I'll first discuss on the problems of the world today. And then I will discuss, so that will be the first phase. The next step will be, what is the cause of these problems? And then what is the solution of these problems? Problems are there, but the question is, what is the solution of the problem? That's the most important thing. Everybody knows about the problem, but how to solve the problem, that's the most important consideration. मैं आज तीन विषय में चर्चा करूंगा. एक, आज के दुनिया में क्या समस्याएं हैं, ये है कि होगा पहला विचार. और उसके बाद ये समस्याएं का कारण क्या है, क्यों ये समस्याएं हैं, और उसके बाद ये समस्या का क्या कोई समाधान है, और अगर है तो वो समाधान कैसे हो सकता. तो ऐसे मैं पहले, समस्याएं जो है वो तो कोई नया बात नहीं, सबको ही पता है, बल्कि फिर भी आई डिस्कस ऑन दैट. हु इज कंट्रोलिंग, जस्ट सेट इट अप. No, don't put echo. Just let it be straight. So, recently, generally I don't read newspapers. But recently I was reading some newspapers in the flight. And then last 2 days I was in Delhi. I was reading some newspapers here. And then today also, in the train, I got a newspaper. So for last 1 week, 10 days, I have been reading the newspapers quite regularly. And I became aware of some very, very big problems, both international and Indian. The international problem is the crisis in the financial world. The big financial companies that deal with billions and trillions of dollars, all of a sudden they realized that they spent more than they can afford to. So the point is, all these big financial companies are going bankrupt. And as a result of that, there is a big crisis. Many, many people have invested their money. People, what do? They put their money in the bank. The bank gives interest. They put their money in trust. They put their money in investments with the faith, with the confidence that their money is safe and their money will get a good return. Now what happened? The people that they trusted with their money, they lost their money. So can you imagine what a major crisis it is? All of a sudden people realize, many, many people are going to realize that they lost everything. Somebody may have 10 million, 20 million, 100 million dollars. They were rich people. Where did they keep their money? They keep their money in the bank, they keep their money in the financial institute, and all of a sudden what happened? Their money is lost, their money is finished, their money is gone. The person who had 100 million dollars, all of a sudden he realized that he lost everything. So what a major crisis it is, what a disaster it is, worldwide. It happened in Europe, it happened in England, it happened in America, mainly in America. Now of course, American government has been very generous. and they are trying to bail them out. Like American government is giving these financial institutes $700 billion to rescue them from this disaster. The otherwise this disaster will destroy the whole world's economy. So this is a problem. Now question is, okay, American government may give them $700 billion, but what is the guarantee that it will save them ultimately? Because the world situation, the world financial situation is in a very, very precarious condition. Today it may be saved, but tomorrow they'll face an even bigger crisis. Okay, anyway, this is one problem that I became aware of when I was outside of India last week. Then I come to India and then I was, what do I see? Of course, when I was away from India, I heard about the bomb blast in Delhi and other places. Then I come to India and I see the newspapers are actually speaking very, very extensively about this. The terrorists, and some terrorists have been caught, and now there is a controversy whether they should be punished, they can be taken to justice, or they should be let loose. That is the controversy now. The point is, the world is in a very, very difficult situation. So this is the first phase. And this way we can see, anywhere we look at, there is problem. And these problems are of two kinds of problems. One is the problem due to the financial mismanagement. This one kind of problem. And the other problem this world is facing is terrorism. And anyway, and these are the two very, very basic roots of the problems of the world today. Terrorism and financial instability. And there are many other problems that are coming in relation to that. As a result of that, so many other things are happening. People are fighting, nations are fighting, the members of the family is fighting, races are fighting, different religions are fighting. Everywhere there is fights. So these are the major problems. Okay, ab main Hindi mein bolne ki koshish karunga. Main jo bola, kaun samajh gaye hain? Haath uthaiye. अच्छा, तो हिंदी में बोलने का जरूरत है? हाँ, अच्छा, जो सोचते हैं कि हिंदी में बोलने का जरूरत है, हाँ, ओके, हाय कृष्ण, मैं साधारणतः मैं अकबर नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि 10-12 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर था, विदेश में था, तो सफ़र करते समय प्लेन में अकबर मिलता है तो देखता है, मैगजीन देखता हूँ। और 2 दिन पहले मैं भारत में वापस आया हूँ, और वहाँ भी मैं 2 दिन दिल्ली में था, वहाँ जहाँ मैं ठहरा था सुबह अकबर आता है, मैं देखता था। आज भी सुबह जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो ट्रेन में अकबर दिया गया था, तो मैं वो भी देखा। तो अकबर में क्या खबर मिलता है? वहाँ खबर नहीं मिलता है, सारे बुरे संवाद मिलता है। वी डोंट गेट न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर्स, वी गेट ओनली बैड न्यूज़। और और दुनिया भर, क्योंकि दुनिया का हाल इतना खराब है, क्योंकि एक बुरा खबर बिना और कोई खबर दुनिया में नहीं मिल रहा, तो इस दुनिया में दोष हो सब ये समस्याएं बहुत गंभीर रूप से, बहुत भयंकर रूप से प्रकट हो रहा है। उनमें से एक है कि अमेरिका में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब आप रुपए कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, तो इंटरेस्ट देने के लिए बैंक को क्या करना पड़ता है, वो रुपए को इस्तेमाल करना होता है। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक उधार देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, जो वो रुपये को अपना कारोबार में और दूसरे कारोबारों में उसको उपयोग करके उस रुपये को बढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं अमेरिका में, यूरोप में, भारत में भी आ चुका है। ये सारे कंपनीज ये रुपए को इस्तेमाल करते हैं। बैंक आपको कितना देता है, 6-7% इंटरेस्ट देता है साल में, और बैंक क्या करते हैं, और किसी को 10% इंटरेस्ट में देते हैं। वो कंपनी और क्या करते हैं, उस रुपए को वो 15% इंटरेस्ट लगा कर देते हैं। तो ऐसे ये रुपए को इस्तेमाल होता है। तो ये जो बड़े बड़े सारे जो कंपनीज हैं, ये कंपनी को अचानक पता चला कि उसके पास जितना रुपया है उससे ज्यादा वो खर्चा करके उससे ज्यादा खर्चा करवाते हैं। तो मतलब उसके पास जितना बाजार में देने को है उतना रुपया उनके पास नहीं है। जैसे अगर आपको रुपया देना है और आपके पास रुपया नहीं होता तो आपका हाल कैसा होता है, बहुत खराब हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-5 हजार का ये करते हैं, डील करते हैं, बल्कि उन लोगों ने क्या करते हैं, उन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी आज खत्म होने के अवस्था परिस्थिति में आ गया है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे आदमी जो इन सारे कंपनीज में और बैंक में अपना रुपया डाला था, उसको अचानक उसका पता चलेगा कि उसके पास और कुछ पैसा नहीं है। जो रुपया उन कंपनी में डाला था वो कंपनी फेल हो गया है। तो केवल देखिए, ये 2-5 हजार का सवाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिसको 100 बिलियन, 200 मिलियन डॉलर्स बैंक में रखे थे और उन लोगों का और इन्वेस्टमेंट में डाले थे, वो लोग को पता, वो लोग एकदम एक दिन के अंदर वो एकदम भिखारी बन जाए। बहुत सारे का ऐसा है, अमेरिका में हुआ भी, वहां तो जो मकान, वहां मकान कैसे खरीदते हैं, वो इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, पूरा पैसा नहीं देते हैं। बैंक बोलते हैं ठीक है तुम 20% दो और बाकी 80% तुम 20 साल में दोगे। तो ऐसा हो चुका है कि 20 साल में से 15 साल का पेमेंट हो चुका है, बल्कि अब उसको पता चला कि उसको मकान और नहीं है, क्योंकि मकान तो उसका नाम में नहीं था, बैंक के नाम में था। तो ऐसे बहुत सारे मुश्किल होने वाला था। तो इसको संभालने के लिए अमेरिका सरकार बोला ठीक है हम 700 बिलियन डॉलर को बैंक्स को हम दे देंगे। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश, वो ये आश्वासन दिए हैं। तो शायद इस स्थिति का कुछ सुधारने का संभावना कुछ समय के लिए है, बल्कि असल बात ये है कि कब तक ये ऐसे उन लोगों ने सुधारेंगे, क्योंकि जैसे दुनिया का हाल है, रुपया लेकर आदमी जैसे काम कर रहे हैं, काफी दिन तक ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन आएगा कि ये सारे उसका बर्बाद हो जाएंगे। और उसके बाद में जब भारत में आया तो क्या अकबर में क्या दिखाई दे रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, टेररिस्ट ने बॉम्ब फेंका है, बॉम्ब से काफी आदमी का मृत्यु हो गया, बहुत सारे आदमी जख्म हुए हैं और बहुत सारे आदमी को ऐसे, और जब उसको पकड़ा भी जाता है तो क्या बोलते हैं पॉलिटिशियंस लोग, क्या बोलते हैं कि जो संतरासवादी हैं उसको भी वो लोग मदद दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है बहुत भयंकर स्थिति है कि जो ये जो लोग बुरा काम करता है, जो अपराधी हैं, जो अन्याय कार्य करते हैं, उन लोगों को अगर सजा नहीं दिया जाए तो इस अन्याय को हम रोक नहीं सकते। क्राइम एंड पनिशमेंट ये दो बराबर है। जहां भी क्राइम मतलब जहां भी अपराध होता है, अन्याय होता है, इसलिए क्या होना चाहिए, सजा होना चाहिए। अगर सजा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लोग बुरा काम करने से उसको किसी तरह हम रोक नहीं सकेंगे। अगर चोर को अगर सजा नहीं मिलेगा तो हर आदमी चोरी करना शुरू करेंगे, बोलेंगे वो ठीक है चोरी करने से कोई हर्जा नहीं है। बल्कि चोरी करने से अगर सजा मिलता तो चोर सोचेगा नहीं बाबू ये करना नहीं चाहिए। ऐसे तो बात यह है कि ये सारे समस्याएं मैं देख रहा था, पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि ये देश, ये भारत का हाल क्या होगा और इस दुनिया का भी हाल क्या कैसा होगा। तो मतलब ये इस दुनिया में सबसे बड़ा दो समस्याएं हैं। एक समस्या है रुपये की समस्या, ये रुपया सेफ नहीं है। हमारा जो रुपया है उसको हम किसी तरह ठीक रूप से संभाल नहीं सकेंगे। ऐसा हो सकता है कि मेरा रुपया जो मैं बैंक में विश्वास करके रखा था, एक दिन हमको खबर मिलेगा कि वो रुपया हम उस जो बैंक में रखा था वो बैंक खत्म हो गया, नहीं तो मैं जो इन्वेस्टमेंट में जो रुपया को डाला था, जो बोला हर साल तुमको 20% इंटरेस्ट मिलेगा मुनाफा के रूप में, तो वो जहां पर हम सारे कमाई को डाला था वो कमाई एकदम एक दिन शायद हमको खबर मिलेगा कि वो पूरा नष्ट हो गया है, खत्म, वो मिलने वाला नहीं। तो ये तो एक तो है रुपये का समस्या और दूसरा समस्या है संतराश की समस्या। या आज कहीं भी हम सेफ नहीं है। हो सकता है कि हम यहां बैठे हैं, कोई एक आदमी आकर एक बॉम्ब यहां फेंक सकता है, और तो देखिए तो हाल क्या होगा। और आजकल जैसा जितने सारे अस्त्र तैयार हुआ, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, पहले अस्त्र क्या होता था, तलवार होता था, धनुष होता था, बाण होता था, बल्कि आजकल का अस्त्र क्या है, जिससे एक आदमी को मारा जा सकता है, एक आदमी एक समय एक या दो या तीन या चार आदमी को मार सकता था। बल्कि आजकल का जो अस्त्र है, आणविक अस्त्र, परमाणविक अस्त्र जो है, उसमें क्या होता है, एक बॉम्ब से सारा शहर खत्म हो सकता है, लाखों करोड़ों आदमी एक पल में
नष्ट हो जाता है।
तो ये दो समस्याएं दुनिया में हैं। तो अब ये समस्या के कारण क्या है, इस विषय में मैं थोड़ा चर्चा करने का कोशिश करूंगा। So now I get to go back to English again. So what's the cause of these problems, this crisis? The cause, first of all, I will consider that it is not that only in today's world we have this crisis. These problems have always been there in this world. These problems had been there 50 years ago, these problems had been there 100 years ago, these problems had been there 500 years ago, this problem had been there 5,000 years ago. We can see 5,000 years ago, what do we find in Mahabharata, the history of India. Mahabharata actually is the history of India. What do you find in Mahabharata? Don't you find there was a major crisis? Even before that, before Mahabharata, we find when Ramchandra came here, was there any problem? Yes, Ravan was causing so much problem. Not only Kamsa caused problem 5,000 years ago, hundreds of thousands of years ago, Ravan caused even greater problem. He was just killing people. Whoever was performing any kind of sacrifice for pleasing the Supreme Personality of Godhead, Ravan and his associates were just killing them, the Rakshasas. Even before that, in Satyayuga, we find how Hiranyakashipu was persecuting all the people. And so in this way we can see that these problems had always been there in this world. Today we may have the problems in certain way. In the past the problems had been there in some other way. But the problems had always been there. There was never a time when this world was free from problems and difficulties and crises. Now why? Because this material nature is the place where we come to face problems. This material nature is the place where we are destined to suffer. There are three kinds of sufferings. Sufferings caused by our own body and mind. That is called adhi-atmik klesha. Then the sufferings caused by other living entities, other creatures. That is called adhi-bhautik klesha. And then there are sufferings caused by the nature, like earthquake, volcanic eruption, famine. They are called adhi-daivik klesha. So these are the three types of sufferings that everybody is subjected to. We suffer due to some disease or due to some kind of maladies of the mind. We suffer because others are causing some distresses. Like, don't we see? We suffer from so many diseases. So many people are suffering from so many diseases, and we also can be subjected to those sufferings. Different types of disease. Then the terrorists, or it can be a terrorist or it can be a mosquito. other living as for us, other living entities are causing us suffering. I am living a very nice, I am very happily situated, but then a terrorist comes and blasts a bomb, right? And I suffer. Or even a small little mosquito comes and bites me and I get malaria. So these are the sufferings caused by other living entities. And then there are sufferings like there is a volcanic eruption, there can be earthquake, there can be war. There can be war, there can be a nuclear explosion. There can be so many different types of accidents. Now tell me, is anyone free from these three kinds of sufferings? One may be very rich, one may have all the wealth, one may have all the influence and power and facility. Like, you know that B.K. Birla's only son, B.K. Birla is one of the most wealthy persons, so famous in India for his wealth. And his only son, he died. All of a sudden at a reasonably young age, he's gone. How did he feel as a father? Being the richest man, how does he feel? Another person is Hinduja, Sri Chand Hinduja. He was also one of the richest men in the world. Much more wealthy than Birla or Tata. And his only son, Dharam, he committed suicide. Only son of the richest man. Now how does it feel? Do you think, or in spite of being the richest man, he was happy? Or so many other people, a rich man, I remember Paul Getty, his daughter was kidnapped. How did he feel? And killed. So this is how, in this material nature, everyone is suffering. Why? Because this material nature is a place of suffering. Dukkhalayam ashvashyata. This material nature is dukkhalayam. Is a place, alayam means a place, which is meant for dukkha. Dukkha means dukkha, suffering, miseries, sorrows. Everyone comes to this material nature to suffer. Therefore, if there is suffering, should you be surprised? No. Now, what is the cause of this suffering? Why are we suffering? The cause of this suffering is our own actions. We cause our own suffering. If we act in a wrong way, we will suffer. If we act in the right way, we will enjoy. This is the law of this material nature, which is known as the law of karma. In physics also, this law is there. To every action, there is an equal and opposite reaction. So that is the law of nature. In physics, there is a law of motion. This is a law of motion, but actually, the reality is that it goes even beyond just inert matter. To every action there is an equal and opposite reaction. But in reality, in our lives also, to every action there is an equal and opposite reaction. opposite reaction. What is the opposite reaction? You try to enjoy, you will get suffering. Or the other way around, you voluntarily accept difficulties, you will enjoy. Like that's why in the past the ascetics, mendicants, used to perform austerities. Austerities means they would voluntarily accept hardship. Why? Because as a result of that hardship, they will get enjoyment. Now again, see how it works. Somebody is undergoing hardship, austerity, and as a result of that he is enjoying. But then as he enjoys, then what happens? Then he will be subjected to the equal and opposite reaction. As a result of his suffering, he will enjoy. And as a result of his enjoyment, he will undergo suffering. So that is the law of this material nature. So ultimately everyone is subjected to miserable conditions in this material nature. Now if today there is some suffering, then we have to understand that it is my own doing. I am responsible for whatever is happening to me. And today if I am enjoying, then also I have to understand that it is happening because of some good things that I have done in the past. But let me be careful that let me do not get carried away by this enjoying spirit. Because if I do that, then I will be subjected to suffering again. So this is a law of nature. Now sometimes it happens individually, sometimes it happens collectively. Sometimes I suffer individually. Like somebody throws a stone, it hits me and I get hurt. But sometimes somebody may come here and blast a bomb. And collectively all of us will suffer. Now what we have to understand from that? That sometimes this karmic reaction will work individually and sometimes collectively, in the sense people, those who have acquired a similar kind of karma, they will be brought together in one situation and then they will be subjected to some kind of difficulties or sufferings. So this is how we have to see the reality of this, of our existence in this material nature. Anyway, so now let me try to speak in Hindi, or should I continue in English? I can continue in English, come to an end, and then say it in Hindi. Will it be better? I want your response. Sanjay? Carry on in English? Okay, go into Hindi now. Okay, and then go into English. Okay. Okay. So, मैं पहले बताया था कि इस दुनिया का समस्या क्या है और ये समस्या का कारण क्या है. मैं अब उस विषय पर चर्चा करूंगा. ऐसा नहीं कि ये समस्याएं केवल आज ही दिखाई दे रही है. दुनिया में समस्याएं हर समय ही था. आज से 50 साल पहले भी था, आज से 100 साल पहले भी था, आज से 500 साल पहले भी था, आज से 5000 साल पहले भी था. 50 साल पहले का समस्या क्या था? भारत में गरीबी बहुत ज्यादा था, इलिटरेसी बहुत ज्यादा था, बीमारी बहुत ज्यादा था। 100 साल पहले क्या था, भारत अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार कर रखा। 500 साल पहले, 300-400 साल पहले क्या था, भारत मुसलमानों का अधीन था और उस समय मुसलमानों ने भारतीय भारतवासी पर अत्याचार कर रखा। 5000 साल पहले क्या था, कंस कितने सारे अत्याचार कर रहे साधुओं को, पर साधुओं को बहुत परेशान कर रहा। कोई 1000 साल पहले क्या था, रावण कितना अत्याचार कर रहा। तो ऐसे हम देखते हैं ये भौतिक जगत में समस्याएं हर समय ही है, हर समय नहीं, हर समय ही था और हर समय ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत दुखालयम अश्वाश्वतम, ये भौतिक जगत दुख के आगार है, आलय है। जैसे कोई व्यक्ति कारागार में सुख भोग करने के लिए नहीं जाता है, कारागार में कैदी को क्यों भेजा जाता है, कैदी को क्यों भेजा जाता है, सजा में दंड के देने के लिए। तो वैसे ही हम लोग भी इस भौतिक जगत में आए हैं यहां दंड भोगने के लिए। तो ये जगह ही है जहां हमको दंड भोगना होता है। इस जगत में 3 प्रकार का दंड या कष्ट या कठिनाई और क्लेश होता है। एक क्लेश, एक तकलीफ होता है शरीर और मन के कारण, उसे आधी आत्मिक क्लेश कहा जाता है। और एक प्रकार का कष्ट या कठिनाई होता है दूसरे के द्वारा दिया जाता है जाने से, उसे आधी भौतिक क्लेश कहा जाता है। और एक प्रकार का क्लेश होता है, कष्ट होता है, जो प्रकृति के कारण होता है, जैसे भूकंप, महामारी, वॉल्केनिक इरप्शंस, महायुद्ध, ऐसे जो है ये प्रकृति के कारण होता है। तो ऐसे इस भौतिक जगत में हम कष्ट भोगते हैं। क्यों? हमारे ये कष्ट जो है इसका कारण हमारे कर्म होता है। जैसे हम कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार हमें उस कार्य का फल मिलता है। जब हम बुरा काम करते हैं उसके कारण हमें सजा मिलता है, कष्ट मिलता है, और जब हम कोई भला काम करते हैं तो उसके कारण हमें सुख मिलता है। तो वैसे सुख और दुख ऐसे चक्र के रूप में चक्कर देते हैं, एक के बाद एक आता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर रात के बाद फिर दिन, वैसे ही हमारा जीवन में भी सुख और दुख चक्र के रूप में आता जाता है। ये कैसे? हमारे कार्य के कारण। जब हम सुख भोगते हैं उस सुख के पश्चात हमें कष्ट स्वीकार करना होगा। इसलिए भारत में जो तपस्वियों से होते थे उन लोगों ने तपस्या करते थे, तपस्या का मतलब उन्होंने वैसे ही कष्ट को स्वीकार कर लेते थे, खुद ही करते थे। क्यों? ताकि उसके परिणाम के रूप में उनको सुख मिल सकता है। बल्कि बात यह है कि अगर उसको अगर सुख भोग लेते हैं तो सुख के कारण, सुख के पश्चात उनको फिर दुख या कष्ट ही भोगना पड़ता है, पड़ता था। तो ये है प्रकृति का नियम, और इस नियम को हम ऐसे तीन रूप में, इस नियम में हमें कष्ट मिलता है और कभी जो सुख मिलता है वो सुख ज्यादा समय तक नहीं रहता है, अश्वाश्वतम, पल भर के लिए रहता है, उसके बाद सुख चला जाता है, उसके बाद दुख आता है। तो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम जो बुरा काम करते हैं इसके कारण हमें कष्ट मिलता है, और जो असल जो गलत मूल जो मुख्य गलत जो है, सारे गलत फहमी का स्रोत क्या है? हम भगवान को भूल, भगवान को हम त्याग दिए हैं, भगवान को त्यागने के कारण हमें यहां सजा मिल रहा है। अर्थात भगवान को त्यागने से हम इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं, और भौतिक जगत को ही वास्तव के रूप में ग्रहण करके इसको भोग करने का कोशिश करते हैं, और इसके कारण हमें सजा मिल रहा है। तो हमारा पहला गलती क्या था? पहला गलती था हम भगवान को अस्वीकार कर दिए, भगवान को त्याग दिए। So now I will go into the third phase. What is the solution to this problem? The solution to the problem is, in order to understand the solution, we have to go to the root of the problem. So what's the root of the problem? The root of the problem is that we have rejected the Supreme Personality of Godhead, Krishna. And as a result of that, we have fallen into this material nature. And as a result of falling in this material nature, what's happening? We are thinking that this material nature is the absolute truth. It is the ultimate reality. And we are trying to enjoy this material nature. So that is called materialism or materialistic outlook. Due to our materialistic outlook, we are suffering. The more you more materialistic you become, more intense will become your suffering. Now, what is the opposite direction? Opposite to material is spiritual. What is the spiritual consideration? The spiritual consideration is accept Krishna as the supreme personality of Godhead, and you become subservient to Him. That's why in Bhagavad Gita, Krishna is giving that solution in a very simple way. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam braj. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami mam shucha. Krishna is saying simply surrender unto Me. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam braj. And that is the solution. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami mam shucha. I will deliver you from all your sinful reactions. Sinful reaction means suffering. So Krishna is saying that I will deliver you from all your suffering. You just surrender unto Me. So solution is as simple as that. Surrender unto Krishna, there will be complete deliverance from the suffering condition. Now the question is, how to surrender to Krishna? Okay, surrendering to Krishna is going to solve all our problems. Then the first question that arises is, do we really accept it wholeheartedly? Do we really believe that? That if we surrender unto Krishna, then the solution, then there will be solution to all my problems? The answer to that will be, give it a try and see it for yourself. Just try it and see for yourself. Krishna is saying it. And there is no reason that Krishna will lie. There is no reason for Krishna to tell you something which is not true. Therefore, the first consideration should be, since Krishna said this, this must be true. If I surrender unto Krishna, it will happen. And then when you do that, then it happens. How many of you surrendered to Krishna? Please raise your hand. Okay, did your suffering condition deteriorate since you surrendered to Krishna? Did you become free from your suffering condition? Had it reduced? Did it reduce? Yeah. So that is the proof. It happens, it works. You surrender to Krishna. And how does it work? I can tell you in so many different ways. Anyway, I'll give you some simple examples how it happens. Now, when you surrender to Krishna, then it is not that there is no suffering. You face suffering, suffering conditions. But those suffering conditions don't affect you. That is it. They don't affect you. It is not that the devotees don't get fever. Few months ago I had a heart attack. It's not that, oh Maharaj, since you're a devotee, why you had the heart attack? Or since you're a devotee, why do you get fever? Since you're a devotee, why the... No, even if you're a devotee, these things happen to you. But the thing is, they don't affect you. They don't affect you. Like for example, okay, you get some difficulties in the body. But when you become a devotee of Krishna, when you surrender unto Krishna, what is the first thing that you learn? You are not this body, you are the spirit soul. Right? Did you learn that? Are you your body? You are your body, but actually you are your spirit soul. Both are there. We can't say, I'm not this body. My body is here. But this body is only a temporary situation. Just like I'm wearing this shirt, this kurta. I'm wearing this kurta. I can't say, no, this kurta is not there. The kurta is very much there and I'm wearing it. And there is an effect of that. If I wear a nice thick jacket in the middle of the winter when it's very cold in Jaipur, I feel good. Don't I? You all are Jaipur Vasis. Jaipur gets very cold in winter. Then don't you feel comfortable when you're wearing nice thick jacket? So this is how you do get affected by what you're wearing. But the thing is that you know that your cloth, your dress is not your actual self. Now if somebody comes and puts some dirt in your cloth, then you don't take it seriously. You may get angry a little bit. Why did you do that to me? But then you know that, well, I can take off this shirt. I can put on another one. So similarly, it's not that your devotee, things don't happen to his body, but he doesn't get affected by that. Because he knows that he is not his body, he is the spirit soul. So that is how a devotee becomes free from the suffering condition. He doesn't become affected by that. But then because he has surrendered to Krishna, he becomes more and more aware of his spiritual identity, and then he becomes more and more connected to Krishna, and as he becomes connected to Krishna, he begins to enjoy, because Krishna is the reservoir of pleasure. Krishna is the source of all enjoyment. So being connected to Krishna, one naturally enjoys. So this is how the suffering condition is mitigated and one enters into a region of enjoyment. So the point is, in order to free yourself from the suffering condition, What is the solution? The solution is surrender to Krishna. Now, in order to surrender to Krishna, what is expected? What is required? You have to believe in what Krishna is saying. That is the first consideration. Then you have to recognize that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Have to have this faith that Krishna is real. Krishna is there. Although we may not be able to see Krishna, but Krishna is there and He is seeing us. I may not be able to see Him, but He is seeing me. And when He sees that I am surrendering myself to Him, Krishna is going to respond. Krishna is going to reciprocate. So this is how we have to understand. We have to have the faith in Krishna. Understanding, recognizing that He is the Supreme Personality of Godhead. Then what may happen? Then maybe, yes, someday we may have to leave this body. Actually, none of us are going to live forever. Can anybody be immortal in this world? Not really, in the sense. Everybody has to give up his body. The body will die. Everybody's body will die. But if I recognize that I am not this body, and death is to the body, will I be affected by the death? By death? No. Therefore, the immortality is possible in this world. But not the immortality of the body, but the immortality of the self, which by nature is immortal. The soul is immortal. And that's one of the first lessons Krishna is giving in Bhagavad Gita. Na jayate mriyate vakadachi. The soul is never born and the soul will never die. Who is born? This body is born. What is birth? The soul accepting a new body is birth. Soul is not born. The body is born because the soul accepted this body. And as long as the soul is in the body is alive. Life is the soul's presence in the body. And now what is death? What is death? The soul's departure from the body. Now who are you? Are you the body or the soul? Soul. So will you die? No. Are you immortal? Yes. So that is how simply you can achieve immortality. So easily we can all become immortal because we are immortal. One of the very, very primary instructions in the Vedas, one of the very, very preliminary instructions of the Vedas is Amritasya Putra. All of you are the children of immortality. Amritasya. You all are immortal by nature. Every one of you are immortal. It is due to ignorance you have forgotten that. Become situated in knowledge. Then you will see that you all are immortal. And it is as simple as that. Just recognizing your actual identity. Now, as I was saying, the death may come. Yes, someday we have to die. Death may come. Whether the death comes lying in bed, surrounded by our friends and relatives, or death comes as an accident, it will come. But then, if we have surrendered to Krishna, then Krishna will take care of us. Now you consider, the death means leaving the body. You are a spirit soul. Now when you are leaving the body, if you see that Krishna is standing there, how will you feel? How will you feel? Won't it be the perfection of your existence? So that is what happens to a devotee who has surrendered to Krishna. Krishna is giving that assurance that
he will never fail his devotee.
Konteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Krishna is telling Arjuna, Arjuna broadcast boldly. Konteya pratijanihi name bhakta pranashyati. My devotee, those who have surrendered unto me, will never vanquish, will never perish, because I will protect them. Krishna himself is giving the assurance, yogakshema vahamyam, that I will carry what they lack. Even if one doesn't become a pure devotee, whatever he is lacking, if he has surrendered to Krishna, Krishna will cover that up. Especially at that time, when the time comes to leave the body, Krishna will take care of his devotee. There are so many examples. Dhruva Maharaj, when the time came, what happened? The chariot came from the spiritual sky, Vaikuntha, to take him. In this way, devotees have been rescued and protected and taken back to the spiritual sky by the Supreme Personality of Godhead. Now when you become situated in that understanding, through that proper surrender, there is nothing to be afraid of in this world. Then let the financial situation collapse. Let the terrorism spread all over the world. Let Ravans and Kumbhakarna and Shishupal and Dantavakra and Kamsa and Bin Laden, let them all come and do whatever they want to do. You are not going to be affected by that. Because Krishna is there to take care of you. Why should you be worried by these demons? Because Krishna has given the assurance, Paritranaya Sadhuna. He will protect the sadhus. Those who have taken shelter of him, Krishna will protect them. There is no doubt about that. And it's not that Krishna will always protect the body. Sometimes Krishna may protect the body. But what is the real protection? The protection is the salvation of the soul. When the soul is reclaimed by Krishna and taken to the spiritual God, that is the ultimate achievement. Okay, so now let me try to translate that in Hindi. So main bola tha ki samasya ka samadhan kaise ho sakta hai. So samasya ka samadhan sochte hue humko sabse pehle vichar karna hoga ki samasya ka karan kya hai. So samasya ka hamare jitne sare samasyaye hain, kathinai hain, सारे समस्याएं का मूल कारण है कि हम भगवान को त्याग दिए. भगवान को त्यागने के कारण हम इस भौतिक जगत में गिर गए और इस भौतिक जगत में हमको केवल कष्ट ही कष्ट मिल रहा. तो ये कष्ट से उद्धार प्राप्ति का उपाय क्या है? इस कष्ट से उद्धार के उपाय है भगवान को स्वीकार कर लेना, भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देना. इसलिए भक्ति भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, भगवान का अंतिम उपदेश भगवत गीता में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. तुम्हारे जितने सारे धर्म है या कर्म है, कर्तव्य है, सब कुछ छोड़कर केवल तुम मेरे शरण ले लो, तब मैं तुमको सारे तुम्हारे पापे भ्यो, सारे पापों से और सारे पापों का जो फल है कष्ट, वो सारे कष्ट से मैं तुमको उद्धार कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा. सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, तब और कोई कठिनाई नहीं रहेगा, तुम केवल मेरे शरण ले लो. तो यह शरण लेने के तरीका क्या है, उपाय क्या है, भगवान का शरण लेने के लिए सबसे पहले हमको ये विश्वास रहना चाहिए कि भगवान जो कुछ कहे हैं, भगवान जो कुछ कहते हैं वो सत्य है। भगवान को झूठ बोलने का कोई जरूरत नहीं था। जब भगवान बोलते हैं तुम अगर मेरे शरण लेने मेरे शरण लोगे तो मैं तुमको सारे कष्ट से कठिनाई से मुक्त कर दूंगा, इस वाणी पर विश्वास रखना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई मामूली इंसान नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान है ये विश्वास पूर्ण रूप से रहना चाहिए। और भगवान जबकि हम भगवान को नहीं देख सकते हैं पर भगवान हमें देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख सकते बल्कि उन्होंने हमें देखा। और जब भगवान देखते हैं कि हम उनको शरण ले लिया है, हम सही रूप से हार्दिक भाव से जब हम भगवान को शरण लेते हैं तो भगवान हमें देख रहे हैं और तब भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है ये मेरे शरण में आ गया है तो इसके सारे जिम्मेदारी आपसे मेरा है। भगवान ऐसे उनका जिम्मेदारी लेते हैं, ये विश्वास पूर्ण रूप से रहना चाहिए। और जब भगवान हमें ऐसे जब हम भगवान को शरण लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तब और कोई कठिनाई नहीं रहेगा, नहीं कठिनाई आएगा। जैसे भगवान को शरण लेने के बाद भी बुखार होता है, बीमारी होता है, कठिनाई होता है, एक्सीडेंट होता है। मैं कह रहा था कि कोई कुछ महीना पहले हम मेरा हार्ट अटैक हुआ था, तो ऐसा नहीं कि भगवान का शरण लेने से, मैं तब अगर बोलता हूँ मैं भगवान को शरण लिया क्यों मेरा हार्ट अटैक हुआ है, नहीं बल्कि ऐसा होता है क्योंकि ये शरीर का धर्म है। बल्कि बात यह है कि जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं तब हम हमारा चेतना ये शरीर में नहीं रहता है, हम अपने ये शरीर को मेरा स्वरूप नहीं समझते हैं। और उसके कारण शरीर में जो कुछ होता है उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, वो शरीर का हो रहा है। जैसे जो कपड़ा हम पहने हुए हैं उस कपड़ा का अगर कुछ हो गया है तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा ये सत्यनाश हो गया है, नहीं हम बोलते हैं ठीक है ये कपड़ा का हुआ है तो ठीक है कपड़ा उतार दो नया कपड़ा पहन लो इसमें क्या है। तो वैसे ही शरीर का जब कुछ होता है तो हम उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि तब हमें पूर्ण रूप से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं ये शरीर नहीं, जो कुछ हो रहा है ये शरीर का हो रहा है। और एक दिन ये शरीर में बुढ़ापा आएगा, ये शरीर को त्याग कर हमें जाना पड़ेगा, बल्कि कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, आत्मा जाएंगे। आत्मा का स्वरूप क्या है, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न कभी आत्मा का मृत्यु होता है। तो जन्म किसका होता है, ये शरीर का जन्म होता है। कब होता है, जब आत्मा एक इस शरीर को ग्रहण करता है, आत्मा जब एक नया शरीर ग्रहण करता है तो तब हम बोलते हैं कि आत्मा का जन्म हुआ, मतलब शरीर का जन्म हुआ। और जीवन का मतलब क्या है, कोई शरीर में आत्मा का स्थिति, जब तक आत्मा है तब वो शरीर जिंदा है, जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है किसका मृत्यु होता है, शरीर का मृत्यु। तो आप कौन है, हाँ आत्मा है, तो आपका मृत्यु होगा नहीं, शरीर का मृत्यु होगा। जो आपका शरीर आप पहने हुए हैं, शरीर ग्रहण किए हुए हैं, उसको त्याग कर आप और कोई शरीर में चले जाएंगे, तो वो शरीर जो है, जो नया शरीर जो मिलेगा वो तो अच्छा होगा ना। एक पुराना कपड़ा उतार के अगर हमको एक नया कपड़ा मिलता है उसको क्या हम नुकसान समझते हैं, तो वैसे ही जब हम सही रूप से हमारा जीवन बिताते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप हमें ऐसा ही पुरस्कार मिलता है। भगवान ऐसे आश्वासन दे रहे हैं कि जो भगवान के शरण में आ गए हैं, जो भगवान के शरण लिए हैं, उसको वो अगर इस जन्म में उसका सारे कार्य अगर पूर्ण नहीं भी हुआ तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको अगला जन्म में कैसे जन्म मिलेगा, शुचि नाम श्रीमतांगी ही योग भ्रष्ट हो जाए। शुचि नाम मतलब पवित्र कई परिवार में, श्रीमतांग समृद्धिशाली, बहुत ही वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली में उसका जन्म। तो देखिए भगवान के भक्त बनने से ये फायदा ये होता है कि अगर अगला जन्म भी होगा, अगर इस जन्म में हमारा कार्य खत्म करके हम भगवत धाम में अगर नहीं भी जा सका, बल्कि अगला जन्म कैसे मिलेगा, एक बहुत ही समृद्धिशाली परिवार में, और जो बहुत ही शुचि नाम मतलब पवित्र परिवार में हमारा जन्म हो, वहां एक नया शरीर मिलेगा। कैसा शरीर मिलेगा, जो शरीर के द्वारा हम फिर से भगवत भक्ति संपादन कर सकें। तो ऐसे भगवत भगवान के भक्त बनने से केवल लाभ ही लाभ होता है, कोई नुकसान किसी तरह का भी होता है। तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, जब हम भगवान को ये सारे समस्याएं का समाधान कैसे हो सकता है, भगवान का शरण लेने से सारे समस्याएं का समाधान। ऐसा नहीं कि तब हमारा कुछ नुकसान या कठिनाई नहीं होगा, होगा, बल्कि उस परेशानी उस कठिनाई हमें स्पर्श नहीं कर सकेंगे। जैसे हम उस समय भी हम पहले भी था, रावण था, कुंभकर्ण था, कंस था, शिशुपाल था, दंतवक्र था, जैसे आज बहुत सारे टेररिस्ट है, ये हैं खराब लोग हैं जो हमें कष्ट देने के लिए कोशिश करेंगे, बल्कि उनके द्वारा हम प्रभावित नहीं। ऐसा नहीं कि हमको मृत्यु नहीं होगा, मतलब ये शरीर का मृत्यु नहीं होगा, शरीर का मृत्यु होगा, बल्कि शरीर छोड़ने के समय अगर हम देखेंगे कि भगवान हमारे सामने खड़े हुए हैं, तब हमारा मन की मनोभाव कैसा होगा, मन में क्या कष्ट होगा शरीर छोड़ने के लिए या आनंद होगा। तो भक्त का पुरस्कार इस रूप में मिलेगा, जब शरीर छोड़ेंगे तो भगवान को प्राप्त, भगवान को सन्निधि, भगवान को कृपा और भगवान को संग हमें प्राप्त होगा, और भगवान की कृपा से हम भगवान के धाम में भगवान के पास वापस चले जा सकेंगे। ये है जीवन की अंतिम पूर्णता, द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न अगर है किसी को आप दे सकते हैं, हम प्रश्न जो करना चाहते हैं आप कागज है आप लिख के वो प्रश्न कागज में दे सकते हैं, किसी को अगर प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं। ये सारे मैं देखिए जो कुछ हम कह रहे हैं विशेष रूप से भगवान के बारे में, ये सारे ज्ञान स्वयं भगवान ही दिए हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को इस आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से प्रदान किए थे और इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना बहुत ही सहज हो गया, बहुत ही आसान हो गया। भगवत गीता पाठ कीजिए और देखेंगे भगवत गीता के भगवत गीता में भगवान कितने सुंदर रूप से ये सारे तत्वों का विश्लेषण किए। ओके, इफ द क्वेश्चन आर रेडी वी कैन स्टार्ट ऑफ, मे बी यू कैन रीड देम एंड देन आई कैन आंसर।
हरि ओम, मेरे क्वेश्चन विष्णु यज्ञ प्रभु महाराज जी, यू सेड दैट व्हेन वी आर फुली सरेंडर्ड टू कृष्णा देन ही टेक्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अल्टीमेटली ही विल नॉट बी अफेक्टेड बाय लॉ ऑफ कृष्णा कर्मा, बट इफ समवन इज नॉट येट फुली सरेंडर्ड but he is trying to surrender, in that case will Krishna help him or from law of karma fully control him?
Yeah, okay, let me, yeah, very good, yeah, right. So yes, when one surrenders to Krishna, Krishna accepts him. Even though the surrender may not be 100%. And that's why Krishna is saying that expression, that yogakshema vahammeham. Yogakshema means that whatever he is lacking, kshema, whatever he is lacking, Krishna is giving the assurance, I'll compensate for that. Like if one is sincerely surrendered and he hasn't been able to surrender 100%, say it is 60%, then Krishna will say, okay, I will take care of the remaining 40%. And that faith we have to have. And another consideration is that it is not that we have to make an endeavor to go to Krishna. Krishna is actually waiting to take us back. Like a father. The son may have left the father, but the father is waiting when the son is going to come back. And when the son shows a little interest to go back to the father, what will the father do? Father will send his car, send his man and say, bring him to me. Right? So that is what we have to do. Just we have to sincerely desire to surrender to Krishna and he will take care of it. Thank you.
दूसरा प्रश्न है गौरव शंकर जी का, ईश्वर की जितनी ज्यादा भक्ति करते हैं उस भक्त को भगवान अधिक कष्ट क्यों देते हैं? ईश्वर की जितनी ज्यादा भक्ति करते हैं उस भक्त को भगवान अधिक कष्ट क्यों देते
हैं? अच्छा, ये तो हमको पता नहीं था, पर वरना मेरा कहना ये है कि भगवान को जब शरण लेते हैं कोई, उसको और कोई कठिनाई नहीं रहता है। इस सिलसिले में मैं प्रश्न किया था कि जो लोग भगवान को शरण लिए हैं उनको क्या परेशानी हो रहा है या आधे सफरिंग और दे आर एंजॉयिंग। फिर से मैं पूछूंगा, आप में से जो भगवान, आप में से कौन कौन भगवान को शरण लिए हैं, हाथ उठाइए। अच्छा, जो भगवान का, आप में से जो भगवान को शरण लिए हैं उनको क्या कठिनाई ज्यादा हो रहा है या कठिनाई नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा, कम हो गए है ना। अच्छा, इसके और एक विचार ये है कि जब हम भगवान को शरण लेते हैं तब ये हम शरीर को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि साधारण रूप से, स्वाभाविक रूप से ही हम ये शरीर के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, क्योंकि हम समझ लेते हैं कि हम ये हमारे शरीर नहीं है, हम हमारे स्वरूप में आत्मा है। ये शरीर में जो कुछ हो रहा है हो रहा है, चाहे कम हो या ज्यादा हो कठिनाई, जो कुछ हो रहा है ये शरीर का हो रहा है, मेरा नहीं। जैसे अगर कुछ कपड़ा, मेरा कपड़ा का कुछ होता है क्या, मैं सोचता हूं कि ये मेरा हो रहा है? नहीं। जो बुद्धिमान है वो कभी नहीं सोचेगा वो मेरा कपड़ा फाड़ दिया मतलब वो हमको फाड़ दिया है, नहीं। तो उसके उसने अपना शरीर के द्वारा प्रभावित नहीं होते।
देखिए समय जो है
इसी
है, समय हमारे पास करीब 20-25 मिनट का और है जिसमें कि प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, तो जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न में ये नाम नहीं है प्रभु जी का, ठीक है, महाराज की परसीव ऑल प्लेजर एंड गेन टू सेल्फ मीन दैट आई नो ओनली बॉडी, दैट हाउ डू वी परसीव दैट आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम
Yes, the physical perceptions are through the senses. But we have to understand that beyond the senses is the consciousness. And the consciousness is not subjected to the senses. Rather, the senses are subjected to consciousness. And the consciousness is coming from the soul. Like the real anatomy is like this. The consciousness, the soul is there, and then the mind, which is the internal sense, and then there are external senses, like 5 senses, eyes, ears, nose, tongue, and touch. And then there's the nervous system. All the nerves, there are hundreds and millions of nerves in the body. Those nerves are ending in different senses. And whatever we are perceiving, the nerve is carrying all those informations. The nerves, how is the nervous system if we notice it? All the nerves are actually converging into the spinal cord. And the spinal cord is running to the coming up to the brain center. And the brain center is the seat of the mind. And it is the mind that is perceiving all the experiences of the body. But beyond, as I pointed out, beyond the body is the soul. And the soul is giving out the consciousness. Consciousness is coming from the soul. Simple consideration, when the consciousness is not flowing through the body, when you are asleep, then a mosquito bites you, do you notice it? No. Somebody is calling you all kinds of names, do you hear that and get angry? No. Why? Because the consciousness is not flowing through the senses, and as a result of that, you are not perceiving anything. But still, you are conscious. So it is not that our consciousness is limited only through the sensual and mental perception. Rather, it is that those perceptions are only limited to the body. Only the physical, bodily perceptions are relative to the nerves and the senses and the mind. But beyond that is the self, the soul, which is the root or the source of consciousness.
दामोदर दास प्रभु जी का प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु जी सब श्री कृष्ण है, इसका कोई शास्त्र प्रमाण बताने की कृपा।
श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, उसका शास्त्रीय प्रमाण। चैतन्य महाप्रभु कब आए थे? 500 साल, लगभग 500 साल पहले। श्रीमद् भागवतम का रचना कब हुआ था? 5000 साल पहले। महाभारत का रचना कब हुआ था? 5000 साल पहले। मतलब चैतन्य महाप्रभु के आगमन के आविर्भाव के लगभग 4,500 साल पहले महाभारत में और श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन हुआ है। जैसा भागवतम में कृष्ण वर्णन त्विषा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध सह। अर्थात श्री कृष्ण जिनका कांति है कृष्ण श्याम, वो अकृष्ण अर्थात गोरे रंग कांति लेके आएंगे, उनके अस्त्र ऐसा अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों के साथ। अगर उन्होंने संकीर्तन यज्ञ का सूचना कर अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये एक नया यज्ञ जिसे संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है, जो कलयुग का युग धर्म है, इस युग धर्म का संस्थापन करेंगे, प्रवर्तन करेंगे। और जो बुद्धिमान है सुमेधा चह जिसका मेधा सुंदर है, उन व्यक्तियों ने इस संकीर्तन योग में संकीर्तन यज्ञ में योगदान करके उनका अनुगमन करेंगे। तो बताइए ये व्यक्ति कौन है? अच्छा, महाभारत में सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांग दी क्षमो शांत निष्ठा शांति परायण। भगवान जिनका रंग श्याम है घन श्याम बादल की घन घटा के जैसे रंग होता है वैसे, उनका उन्होंने सुवर्ण वर्ण सोने की कांति ग्रहण करके सुवर्ण वर्ण हेमांग और उनका सारा अंग चंदन के द्वारा चर्चित रहेगा। उन्होंने संन्यास ग्रहण करके इस धरती पर शांति और पूर्ण समृद्धि का मार्ग प्रदर्शन करेंगे। सन्यासकृत समो शांति निष्ठा शांति पर आए। बताइए वो व्यक्ति कौन है? अच्छा, और भी अनर्पित चरिम चिरात करुणाया वतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत जल रसां स्वभक्ति श्रियां हरिपुरत सुंदर दूति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वर्षचिनंदन। अर्थात जो वस्तु पूरा वो पहले कभी भगवान नहीं प्रदान किए थे, वो कौन सी वस्तु है? वो है विशुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम। ये शुद्ध निर्मल कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए उन्होंने आकर एक संकेत ये स्वभक्ति श्रीयम अपने भक्ति को अपना भक्ति श्री संपदा को प्रदान करने के लिए उन्होंने आएंगे इस कलियुग में। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्माद एकात्मानो गोपी भूमि पूरा देह भेदं गतो तो चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैकमाप्तं राधा भावोद्युति सुबलितं नौमी कृष्ण स्वरूपम्। अर्थात राधा और कृष्ण है शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान से ही शक्ति का प्रकाश होता है। तो ये शक्ति और शक्तिमान अलग हो गए थे, बल्कि उन्होंने शक्ति और शक्तिमान जब एक हो जाते हैं, ये शक्ति और शक्तिमान कौन है? राधा और कृष्ण। राधा रानी है शक्ति और श्री कृष्ण है शक्तिमान। तो उन्होंने अब एक होकर, अर्थात शक्ति और शक्तिमान एक होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण, शास्त्र प्रमाण महाप्रभु के विषय में है। हरे कृष्ण।
एक और प्रश्न है अमित सोनी जी का। जब हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो हमारा आगमन भौतिक जगत में क्यों हुआ? क्योंकि भगवान के धाम से पुनरावृत्ति नहीं।
हाँ, यद्यपि हम भगवान के अंश हैं, पर हम भगवान के बहुत क्षुद्र अंश हैं। जैसे आग और चिंगार, आग जब चिंगार जब चिंगार आग है, बल्कि जब चिंगार आग से निकल जाता है, तब अपना जो अग्नि का जो शक्ति, अग्नि का जो शक्ति चिंगार में था, वो नष्ट हो जाता है और भस्म में गिरकर चिंगार जो था वो भस्म बन जाता है। तो वैसे ही यद्यपि हम भगवान के भगवान के ही अंश हैं, परंतु क्षुद्र अंश होने के कारण जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं और इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं, तब हम हमारा जो आध्यात्मिक या चिन्मय जो गुण है उसको हम खो बैठकर इस भौतिक जगत का जो गुण है इसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए जीव को, जीव शक्ति को भगवान को तटस्था शक्ति कहा गया है। तट का मतलब है नदी का इस पार में है पानी और उस पार में जमीन, और जमीन और पानी के बीच जो एक, जहां पानी और जमीन का संगम होता है उसे तट कहा जाता है। इस साइड में पानी, उस साइड में भूमि जमीन। तो ऐसे ही जीव अगर चाहता है तो इस भौतिक जगत में रह सकता है, और अगर चाहता है तो भगवान के पास जा सकता है। जब वो भगवान से अलग हो जाता है तो भौतिक जगत में गिर जाता है, और जब वो भगवान के साथ युक्त हो जाता है तब वो भगवान का ही जो शक्ति है, जैसे चिंगार भस्म में गिरने के कारण भस्म बन गया था, बल्कि उसको अगर उतार निकाल के अगर हम आग में डाल देते हैं तो क्या होता है? और फिर आग बन जाता है। तो वैसे ही हम जब भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, तब हमें पूर्ण रूप से उस आध्यात्मिक शक्ति को हम प्राप्त हो जाते हैं।
और प्रश्न है, इफ वी कम अक्रॉस ए प्रॉब्लम दैट शुड बी ट्राई टू मेक आउट ए सॉल्यूशन, और वी शुड लीव ऑल टू कृष्णा एंड रेस्ट विद
हिम? डू बोथ। यू ट्राई इट बिकॉज यू आर ए मैन और ए वुमन, सो यू हैव द एबिलिटी, but at the same time depend upon Krishna, depend upon Krishna and try to overcome those difficulties.
अगला प्रश्न है, जब आत्मा की न जन्म होता है न मृत्यु, लेकिन आत्मा का आकार बताया गया कि बाल के अग्रभाग के 10,000 वहां के साथ है, यह किस प्रकार निरूपण किया?
ये आत्मा का जो ये जो जो डायमेंशन बताया गया है, 10,000 भाग केशाग्र 10 भाग से सतधा, केशाग्र 100 भाग से सतधा, अर्थात केश के अग्रभाग का 10,000 भाग के एक भाग के बराबर है आत्मा का। ये तब होता है जब आत्मा भगवान से अलग हो जाता है और इस भौतिक जगत में, ये शरीर में, शरीर को अपना स्वरूप समझता है, तो आत्मा इतना क्षुद्र एक अंश बन जाता है। बल्कि भक्ति के द्वारा जब भगवान को सेवा शुरू करता है तो उसका आध्यात्मिक शरीर का प्रकाश होता है, और जब वो पूर्ण रूप से भगवान के सेवा में लग जाते हैं तब उनका आध्यात्मिक शरीर का प्रकाश होता है।
और प्रश्न है, घनश्याम चौधरी का प्रश्न है, मान्यवर भगवत शरण से क्या प्राप्त है, हम किस तरह से भगवत शरण में जा सकते हैं एवं क्या शरण में है।
हाँ, ये भगवान को शरण लेने का 6 स्तर है और यह 6 प्रकार का अंग है। पहला अंग है दैन्य, अपने आप को बहुत क्षुद्र बहुत दीनहीन समझना होगा। अगर घमंड रहेगा कि मैं इतने बड़े आदमी हूं, तब भगवान को शरण हम ले सकेंगे। तो पहला ये है दैन्य। उसके पश्चात आत्मनिवेदन, अपना जो कुछ है वो भगवान को अर्पण करना है, अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, आत्मनिवेदन। गोपचित्त वरण, भगवान ही केवल मेरा प्रभु है ये भावना, अवश्य रखी हुए कृष्ण विश्वास पालन कि भगवान हमको हर स्थिति में रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास। और भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार, जो भक्ति के ये जो अनुकूल कार्य है उस कार्य का ग्रहण करना, और भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार, जो भक्ति के प्रतिकूल भक्ति के विरोधी जो कुछ स्थिति है कार्य है उसको त्यागना। तो ये शरण, ये शरणागति भगवान को शरण लेने का ये 6 अंग है, इसको पालन करके भगवान को शरण लेना चाहिए।
एक प्रश्न है, आपने प्रवचन में बताया कि हम परमात्मा कृष्ण के शरणागति में रहते हैं, यह शरीर त्यागने के बाद ही हमें मानव शरीर नहीं मिलेगा, तो कृपया बताए कि मानव योनि में आने के बाद कितनी मानव योनि प्राप्त होती है।
ये देखिए, आपका शरणागति का ऊपर इसका निर्भर है। अब इस जन्म में अगर पूर्ण रूप से भगवान को शरण ले लिए हैं तो और कोई से किसी जन ही प्राप्त नहीं होगा, आप अपना स्वरूप प्राप्त होकर भगवत धाम में वापस चले जाएंगे। बल्कि भक्त का मनोभाव ऐसा रहता है कि मैं तो भगवान के शरण में हूँ और भगवान जो कुछ करेंगे वही मेरे लिए सही है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, अगर आप हमको मारना चाहते हैं तो मारिए मार डालिए, आप अगर हमको रक्षा करना चाहते हैं तो रक्षा कीजिए। शरण लेने का मतलब ये होता है कि आप जो चाहें वही करेंगे, मैं आपका दास हूं। ऐसा नहीं कि मैं मालिक हूं और आप मेरा दास हैं, मैं आपको ऑर्डर दूंगा कृष्ण ये करो कृष्ण ये करो मेरे लिए, नहीं। दास का मनोभाव कैसा होता है कि आप जो चाहेंगे वही मेरे लिए सही है। और दास का मनोभाव ऐसा रहता है, और प्रभु का मनोभाव क्या कैसा होता है, ये मेरा बहुत ही प्यारे है, इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ।
और
व्हाट इज द सिम्टम, एज आई से लाइक द कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज ऑथोरिटी, व्हाट एवर यू वांट I am prepared to accept that. That is the meaning of surrender. Like if you have a servant, and if the servant tells you, do this for me, do that for me, is he actually acting like a servant? No, he is acting like your master. The servant is Prabhuji, aap jo kuch bolenge, main karne ke liye taiyar hu.
If one can see Lord at the time of death, he should be able to see before that also. Thank you.
That will depend. You see, again, he is the master. So it will depend upon his will. When he wants to manifest himself to you, just wait for that. If he wants to show himself now, or at the time of death, or even if he doesn't show himself at the time of death, a devotee doesn't worry about that. He is my Lord. If I say, Krishna, you have to come to me now, then am I acting like his servant and accepting him as the Lord? No. So Lord means surrender, whatever you want to do. And it is true, like if he can come at the time of death, he can come before also. And the thing is, he has come before you. You go to the temple, Right here is Govindaji temple. Go and see the temple. Who are you seeing? Do you think you are seeing a statue made of stone? Then it is an extremely unfortunate situation. When you stand in front of Govindaji, consider that you are seeing Krishna. This is Govindaji himself. With that faith you have to look at him. And then only you will see how he stands in front of you.
प्रतिभा कुमारी महाराज श्री कृष्णा ने मन में उठने वाली प्रेरणा के माध्यम से प्रेरित करते हैं क्या हमारे मन में आने वाले विचारों के माध्यम से जीवन की राह दिखाते हैं परंतु कई बार हमारे अपनी सोच हमारी इच्छाएं हमारे विचारों को भ्रमित करते हैं तो हम कई बार समझ नहीं पाते कि हमारी अपनी सोच हमें प्रेरित करती है या कृष्ण द्वारा आने वाली प्रेरणा से हम प्रेरित हो रहे हैं
ये स्थिति
अच्छा
जब ऐसी कंफ्यूजन है तब कोई भक्तों के पास जाके पूछना कि ये क्या मेरा मन की कल्पना है या भगवान के द्वारा प्रेरणा है और प्रेरणा का और एक प्रभाव ऐसा है कि हमको ये भक्ति के अनुकूल जो कुछ भावना है जो हमें भगवान की भक्ति करने को प्रेरणा देता है वो हमको भगवान का ही निर्देश के रूप में ग्रहण करना चाहिए बल्कि अगर हम सोचेंगे कि जी हाँ भगवान हमको नाइट क्लब में जाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं नहीं तो उस प्रेरणा ये भगवान का नहीं है भक्ति के अनुकूल जो कार्य है वो है भगवान के द्वारा दिया हुआ और जो कार्य हमको भगवान से विमुख कर देते हैं उसको भगवान की प्रेरणा के रूप में नहीं इसे प्रेरण करना चाहिए आप अगर नाइट क्लब में जाना चाहते हैं जा सकते हैं बस ये मत सोचना है कि भगवान आपको नाइट क्लब में जाने के लिए भेज रहे हैं बल्कि अगर प्रचार करने के लिए आप वहां जाना चाहते हैं तो ठीक है ये कार्य भगवान के लिए ही है तो हमको विचार ये करना होगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं ये कि भक्ति के अनुकूल है भगवान की सेवा के अनुकूल हो रहा है या भगवान की सेवा के प्रतिकूल हो रहा है तो अनुकूल जो है उसको हर स्थिति में ही ग्रहण करना चाहिए
प्रभु जी
हैं रमेश
चतुर्वेदी जी का प्रश्न है श्री राम एवं श्री कृष्ण में विशेष अंतर क्या है श्री राम को सदा त्याग किया एवं
बहुत सुंदर बहुत अच्छा देखिए रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात शास्त्र की मर्यादा शिक्षा देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के रूप में और श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम अपने लीला को आस्वादन करने के लिए अपने भक्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमको आचरण करना चाहिए और इसलिए रामचंद्र का जो कार्य है लगता है कि रामचंद्र का कितना कष्ट हो रहा है बल्कि भगवान हर स्थिति में ही आनंदमय है भगवान का ये जो लीला है ये भगवान का अभिनय है जैसे मंच पर अभिनेता ने अभिनय करता है वैसे ही भगवान हमें कुछ शिक्षा देने के लिए अपने लीला विलास करते हैं ये अभिनय है तो रामचंद्र कौन से अभिनय कर रहे हैं रामचंद्र अभिनय कर रहे हैं मर्यादा धर्म की मर्यादा स्थापन करने का कैसे हमें आचरण करना चाहिए इसलिए रामचंद्र का जो लीला है उसको अनुकरण करना चाहिए हम अगर भगवान को अनुकरण करना चाहते हैं तो रामचंद्र का अनुकरण करना चाहिए कृष्ण का कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए कि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं अपने लीला अपने भक्तों के साथ आनंद आस्वादन करने के लिए और रामचंद्र शिक्षा दे रहे हैं कैसे हम आनंद प्राप्त हो सकते हैं धर्म के मार्ग में स्थिर होकर हम आनंद के सागर की ओर जा सकते हैं। ये शिक्षा रामचंद्र दे रहे हैं। और कृष्णचंद्र ने दे रहे हैं कि मैं तो भगवान हूं, ये मेरा लीला है, तुम अगर चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, बल्कि इस लीला में योगदान करो, लीला में मेरा अनुकरण करने का कोशिश मत करो, तो मुश्किल हो जाएगा। मेरा उम्र जब 7 साल का था तो मैंने गिरिराज गोवर्धन को मेरा अंगली पर उठाया था, तो वो ऐसा कार्य करने का कोशिश मत करो, अगर करोगे तो तुम्हारा तकलीफ हो जाएगा। भगवान गिरिधारी, हम लोग गिरिधारी बन सकेंगे, हम ये लीला का अनुकरण कर सकेंगे, कभी नहीं। भगवान ऐसे जो लीला किए हैं एक रूप से, ये कोई और किसी के लिए असंभव है, कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए कृष्ण लीला में ऐसे हाथ जोड़कर भगवान के अनुगत से अनुगमन करते हुए उनके लीला में प्रवेश करना चाहिए, अनुसरण करके उनके लीला में प्रवेश करना चाहिए, अनुकरण करके नहीं।
अंतिम प्रश्न लेंगे, प्रश्न है, संसार का निर्माण भगवान ने विषमताओं रहित क्यों नहीं किया ताकि दुख रहित सुगम जीवन समस्त जीवों को उपलब्ध हो।
मैं तो पहले बताया था कि ये दुखालयम अश्वाशतम है, ये कष्ट पाने के लिए जगह है, तो जब कष्ट का थोड़ा सा कमी होता है तो वह हम बोलते हैं सुख मिल रहा है, बल्कि असल में ये स्थान दुख से भरा हुआ है। तो दुख का जब कुछ कमी होता है तो हम बोलते हैं कि हमें सुख का मतलब क्या है, दुख का निवृत्ति। दुख जब कुछ समय के लिए चला जाता है तो हम बोलते हैं ये सुख, बल्कि सुख के हर समय रहता है नहीं, सुख के पश्चात दुख आता है और दुख ही रहता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जगह दुख पाने के लिए ही है, सुख को जो कोशिश हम कर रहे हैं असल में वो आनंद प्राप्ति के अनुसंधान कर रहे हैं, और आनंद प्राप्ति इस जगत में नहीं मिलेगा। आनंद के लिए हमको इस भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है वहां पहुंचना होगा, और वहां जाने का उपाय क्या है, वहां जाने का उपाय है भगवान की शरण लेना। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।